اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے. آج جس ٹاپک کو ہم پہلے لیں گے وہ ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل, پیج ہے 239. اس سے پیچھے ہم نے جو آخری چیز دیکھی تھی وہ تھی غزوہ بنو قریظہ, اور اس کے اینگل میں ہم دیکھ چکے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ شکنی کی بنیاد پر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور اس سے ہمیں اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی کہی بھی بات کو نہ نبھائے, جو ذمہ داری اس کو دی جائے اس کو اس کے حق کے طور پہ پورا نہ کرے, تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو کون سی اور جنگیں لڑنی پڑی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہادری کے جوہر دکھائے. اس میں ابو رافع سلام کے قتل کی بات بہت معروف ہے. کون تھا یہ شخص؟ حجاز کا تاجر تھا اور یہود خیبر کا رئیس تھا, اور ان بہت بڑے مجرمین میں سے تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا. اسے پچھلی ہی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح گلی گلی پھر کے انہوں نے لوگوں کو اسلام کے خلاف جمع کیا, اور سب اپنے طور پہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آگے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے. تو یہاں یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو ان کے جرم اور ان کے کاموں کے مطابق سزا دیا کرتے تھے. مسلمان جب غزوہ احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو گئے تو خزرج کے 5 لوگ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے, تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جتنا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کریں. کعب بن اشرف کا نام کافی دن کے بعد آپ نے سنا ہے, تو آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ یہ بھی ایک سردار تھا یہود کا, اور اس کا قتل شروع ہی دور میں ہو چکا. یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا, تم لوگ یہیں ٹھہرو, میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں, ممکن ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں. آپ یہ سب چیزیں سیکھیے کہ کس جنگ میں کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی اور اس کا فتح پر کیسے اثر پڑا, کیونکہ بعض دفعہ ہم ایک بات اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن موقع درست نہیں ہوتا. خیر, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روکا کہ تم لوگ یہاں رکو تو میں آتا ہوں. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا کہ قضاء حاجت کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ فیل کرانا چاہ رہے تھے کہ یہاں میں اپنی کسی ضرورت سے آیا ہوں. پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا, او اللہ کے بندے, اگر اندر آنا ہے تو آ جا, ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے, ایک تو صحابہ کی کوششیں اور ان کے ہیلے ہوتے تھے نا, دوسری اللہ کی پھر مدد ہوتی تھی. جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے پھر حالات خود بھی بناتا ہے, دوسروں کی مت خود ہی ماری جاتی ہے, اور وہ بہت زیادہ پوچھ گچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. جیسے کہ پیچھے ہم حضرت حذیفہ کے قصے میں سن چکے کہ ان کے ساتھ والے نے پوچھنا تھا لیکن وہ انہوں نے ہی اس سے اس کا حال چال پوچھ لیا. بہرحال, عبداللہ بن عتیق کے لیے اور کیا چاہیے تھا, موقع مل گیا, اندر گئے, چھپ گئے. جب لوگ سو گئے تو انہوں نے چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ ضرورت پڑنے پر بھاگنے میں آسانی ہو. اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا. ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے, تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لے. یہاں دیکھیے کہ مشن سے محبت اور کام, جس کام کو کرنے کے لیے گئے تھے وہ نہیں چھوڑا. ہم بعض دفعہ کسی جگہ کسی کام کی نیت سے جاتے ہیں لیکن ادھر کی کھڑکیاں, پردے, دروازے ان کو اتارتے رہتے ہیں, اور ڈسٹریکشن بہت ساری ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. تو بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے اس کے قلعے, اس کے محل میں اتنی چیزوں کو دیکھے بغیر سیدھا اس کی جگہ پہ پہنچ گئے. جب اس کے حجرے میں پہنچے تو اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں, کیونکہ اس دور میں اس طرح نائٹ لیمپس تو نہیں ہوتے تھے. بہرحال, انہوں نے اس کو آواز دی, ابو رافع. اس نے کہا, کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی, لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری. تو جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. کابو رافع, یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا, تیری ماں برباد ہو, ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا, لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا, اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک جا رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے. चांदनी रात थी और इनकी निगाह कमज़ोर। उन्होंने समझा ज़मीन तक पहुंच चुके हैं। पांव बढ़ाया तो सीढ़ी से नीचे आ रहे और पांव में चोट आ गई। उन्होंने पगड़ी से पांव बांधा और दरवाजे के पास छुप रहे। जब मुर्ग ने आवाज़ दी तो एक आदमी ने किले की दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया कि महले हिजाज के ताजिर अबू राफे की मौत की इत्तला देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अतीक ने जान लिया कि वो मर चुका है। बस अपने साथियों के पास गए और सब ने मदीना की राह ली। रसूलुल्लाह के पास पहुँच कर वाकया बयान किया। आपने इनके पाँव पर दस्ते मुबारक फेरा और इन्हें ऐसा लगा गोया कि कोई तकलीफ़ ही ना थी। तो यहाँ आप देखिए कि अगर आप सतही नज़र से सुन रहे थे ना, तो बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके जहन में, क्या ये ठीक बात है, ये अच्छी बात है, इस तरह उसके घर में जाके घुस के उसको मारा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इसकी बजाय फिर टॉर्चर सेल्स, जेल की घड़ियाँ, और ख़ास तौर पे जो आज के दौर में आप देखिए कि लोगों को मारने मरवाने के तरीके वो इख्तियार किए जाते, तो वो ठीक थे। दूसरी बात है कि जिस शख्स ने वादा खिलाफी की और सारे लोगों को जमा किया इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्या वो कोई महज़ब आदमी था कि उसके साथ कोई महज़ब सलूक किया जाता? बस ये बुनियादी नुक्ता अगर हमें इस्लाम का समझ आ गया ना, तो हमें किसी मसले पे कोई शुबा नहीं रहेगा कि अल्लाह के नबी ने ये क्यों किया और वो क्यों किया। आप आज के दौर में लीजिए, किसी शख्स के बारे में ख़बर मिल जाए कि उसने फलां मुल्क पर हमले के लिए सारी दुनिया के लोगों को, मुल्कों को प्रवोक किया, एक किसी का जुमला मिल जाए ना किसी बेचारे का तकरीर में या स्पीच में या तबलीग में, काट छांट के उसको कहाँ ले जाते हैं। आपको होता है कि ये बात कहते हुए मुझे एक वाक्या याद आ गया, तकलीफ़ के साथ होता है, यानी एक इतने अच्छे मुसलमान ब्रदर के, बिल्कुल जिसको आप कहें कि शरीफ उत्तबा, जिन्होंने कभी शायद किसी से ऊँची बात भी ना की हो, सिर्फ इस वजह से तकरीबन 5-6 साल और इससे कमोबेश जेल की सलाखों में बंद किया गया उनको, कि उनके हाथ में क्लाशनकोफ के साथ तस्वीर देखी किसी ने। कहानी बड़ी लंबी थी कि कोई शख्स मुसलमान हुआ, इन लोगों की दोस्ती थी, लड़कों का ग्रुप था, एक दिन कहते हैं किसी तरह सैर के बहाने, शिकार के बहाने सब गए, तो उस शख्स ने इनको कहा ये पकड़ो मैं तस्वीर खींचता हूँ। बस अल्लाह की पनाह वो तस्वीर ऐसा फितना बनी कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी आजमाइशों में डाला। पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की दोस्ती भी है उनसे, अब तो खैर काफ़ी अर्सा उस तरह से बात नहीं होती, लेकिन इतनी मुश्किलात से गुजारा उन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुतमईन और खुश हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह आजमाइशों से बचाए। आप तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के बारे में कोई बात नहीं सुन सकते, तो कहाँ कोई इतनों को जमा करके मुसलमानों को मारने आ जाए, तो उसको इस तरह मार देना क्या बुरी बात है? आज कोई ऐसा मुजरिम होता तो उसको तो जेल की सुराखों में रखते और फिर सारी दुनिया को दिखा के उसको मरवा दिया जाता। तो बहरहाल ये एक दरवाज़ा बंद हुआ। और यहाँ से एक और मिजाज भी नोट करें कि अल्लाह के नबी हर फितने को ख़त्म करना चाहते थे, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये सारे फितनों के सामने सर तोड़ दें जिन्होंने बाद में सहाबा को सताना था। क्योंकि बाज़ दफ़ा लीडर्स की ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं वो भी बड़े होते हैं, लेकिन उनके बाद जो मसाइल होते हैं वो फिर इतने बड़े बन जाते हैं कि उसकी वजह से साथियों में फूट पड़ने का डर होता है। तो अल्लाह के नबी के ये सारे इकदाम जरूरतमंदाना भी थे, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की ताईद इनको हासिल थी। जब अल्लाह ताला को इसमें कोई एतराज़ नहीं, तो मैं और आप ऐसी बातों पे क्यों परेशान हों। एक और बहुत खूबसूरत वाक़या हुआ गज़वाए खंदक के बाद, और वो क्या था, यमामा के हाकिम सुमामा बिन असाल की गिरफ्तारी और उनका कबूल इस्लाम। बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज़ वाक़या है। कहानी कुछ इस तरह से हुई कि सुमामा नाम के शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन को सख्त नापसंद करते थे। बहुत सारे लोग आज भी होंगे, उस दौर में भी थे। चुनाचे मुहर्रम 6 हिजरी में मुसलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदल कर अल्लाह के नबी को कत्ल करने निकले। अब आप इस जुमले को ज़रा मोटा सा हाईलाइट कर लेना, क्योंकि जब कोई बात होती है ना, तो हम उस शख्स का वो अमल नहीं याद रखते, लेकिन मुसलमानों की और सहाबा की वो कार्रवाइयाँ हमें याद रह जाती हैं। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा को 30 सवारों के साथ दरिया के अतराफ में, जो बसरा के रास्ते में मदीना से 7 रात के फासले पर वाक़े है, बनी बकर बिन कल्लाब को अदब सिखाने के लिए भेजा। यानी ये तादीबी कार्रवाइयाँ थी, और तादीबी का लफ्ज़ ये अदब से होता है। हमजा दालबा कि इनको ज़रा मज़ा आ जाए कि आइंदा कभी इस तरह का ये कोई काम नहीं करेंगे। बहरहाल सवारों ने वापस आते हुए रास्ते में सुमामा को पा लिया। इनको गिरफ्तार करके मदीना ले आए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो फरमाया, सुमामा, तुम्हारे नज़दीक क्या है? यानी अब देखिए अल्लाह के नबी का अंदाज़ और कितनी मोहब्बत से उससे बात करते हैं। उन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक खैर है। अगर कत्ल करो तो एक खून यानी कसास वाले को कत्ल करोगे, मुराद जाए कि मेरे ख़ानदान के लोग तुमसे बदला लेंगे, और अगर एहसान कर दो तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, और अगर माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहो दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि अल्लाह के नबी की ऑप्शंस कितनी खूबसूरत है, और इतने महज़ब अंदाज से बात कर रहे हैं कि एक रिवायत में आता है कि इस मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा कि अनज़िलु नास मनाज़िलहुम, लोगों से उनके रुतबे के मुताबिक डील किया करो। जो बड़े ओहदे का बंदा है, जो अपनी कौम का सरदार है, तुम भी उनके साथ अच्छा मामला करो। बल्कि लोगों ने इनको बांधा हुआ था तो आपने कहा कि इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। खैर, इसके बाद आपने इन्हें इसी हाल में छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर गुजरे, फिर यही गुफ्तगू हुई। यानी आप इमेजिन करें ना, एक कबीले का सरदार है, मुसलमानों के हाथ में आ चुके हैं और अल्लाह के नबी के कत्ल के इरादे से निकले हुए थे। एक जवाब तो कहता है झट से पकड़ो और काम तमाम, और दूसरा कह के नहीं, सुमामा सुनाओ क्या हाल है, क्या सोचते हो, इस्लाम कैसा लगता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये तो वही कर सकता है जो ठंडे सुबह का आदमी हो और जिसका टेम्पर पहले ही लूज़ हो जाए, और जो गुस्से में पेचोताप खाए और मुट्ठियाँ भींचे और इधर से उधर पीछे कमर के हाथ रख के चक्कर लगाता फिरे। वो दुश्मन को क्या मारेगा, वो तो खुद ही अपने आप को पहले मार रहा है। तो अल्लाह के नबी बड़े प्यार से उससे पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो? दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी ये हुआ। बल्कि यहाँ तो बात बड़ी मुख्तात है और रिवायात जो है डिटेल की वजह से शेयर नहीं कर रही, लेकिन ख़ुलासे में उसमें एक दो बात बता दूँ कि रिवायात में आता है कि सुमामा अल्लाह के नबी की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कहते थे, मुझे अल्लाह के नबी का चेहरा अच्छा नहीं लगता था शुरू में, मुझे किसी का चेहरा अगर नागवार था तो वो आपका था। लेकिन आप देखिए कि जब तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने साथियों से कहा कि सुमामा को छोड़ दो, तो सहाबा ने उनको छोड़ दिया। इन्होंने गुसल किया और मुसलमान हो गए। फिर कहा, अब ये लफ्ज़ हाईलाइट कर लीजिएगा, वल्लाही रुए ज़मीन पर कोई चेहरा मेरे नज़दीक आपके चेहरे से ज़्यादा काबिल नफ़रत ना था। कब? जबकि दिल में कुफर भरा था। लेकिन अब आपका चेहरा मेरे नज़दीक दूसरे तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है, और वल्लाही रुए ज़मीन पर कोई दीन मेरे नज़दीक आपके दीन से ज़्यादा नापसंदीदा ना था, मगर अब आपका दीन मेरे नज़दीक दूसरे तमाम अदियान से ज़्यादा महबूब हो गया। ये जुमले कौन बोलता है? मैं इसको बोल रही थी तो मेरे जहन में आज के दौर के वो लोग आ रहे थे जिनके बारे में ये मारूफ है कि वह नबी सल्लम के दुश्मन है। कोई दुश्मनी में किताब लिखता है तो कोई दुश्मनी में कार्टून बनाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब दिल में बुग्ज़ है तो ऐसा दिल है। आज अगर हम में से कोई उनके साथ उसी अखलाक और हिकमत के साथ मामला करे जो आपका था, नबी सल्लम का था, जो तो आप सोचिए कि हो सकता है कि उनके भी दिल बदल जाएं। अल्लाह दिलों का मालिक है, उसके लिए हर चीज़ आसान है। लिहाजा इस चीज़ के बारे में इंसान हमेशा हिर्स रखे कि कुफर को ख़त्म करें, काफिर को नहीं। अल्लाह के नबी की जंग काफिर से नहीं, कुफर से थी। अल्लाह ताला हमें भी इतना तहम्मुल, सब्र और हौसला दे दे। यहाँ से निकले, वापसी पर उमरे के लिए तशरीफ़ ले गए हज़रत सुमामा। कुरैश ने इन्हें इस्लाम लाने पर मलामत की, क्योंकि कोई भी नहीं पसंद करता, जैसे बहुत सारे लोग आपके दीन पे आने को, कुरान पढ़ने को, हिजाब और निकाब करने को पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग तो एक ख्वाहिशों की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो उनको अच्छी लगती है। खैर, इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा, वल्लाही तुम्हारे पास यमामा से गेहूं का एक दाना भी ना आएगा जब तक के रसूलुल्लाह इसकी इजाज़त ना दे दें। क्योंकि सारा वहाँ का अनाज कहते हैं कि यमामा से आता था, मक्का में ख़ुद तो कुछ उगता नहीं था। तो इन्होंने धमकी दी कि हम तुम्हारी एड बंद कर देंगे। अब आप देखिए कैसे अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को इस्लाम दोस्त बनाता है। बल्कि कहते हैं कि इन्होंने तो कह दिया कि अब इनको मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वापस आए, मक्का वालों को गंदम बेचने से लोगों को रोक दिया। अब मुश्किल में पड़ गए, फाके होने लगे, हत्ता के फिर मक्का वालों ने अल्लाह के नबी को रिश्तेदारियों का वास्ता देकर लिखा कि आप सुमामा को लिख दें कि वो गेहूं बेचने की इजाज़त दे दें, और आपने ऐसा ही किया। क्या सीखा आपने? और ये पूरी रिवायत जो ये सही बुखारी की है, हदीस के नंबर नीचे लिखे हुए, आप बाद में देख सकते हैं। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी बातें हैं ना। अच्छा अखलाक जो होता है ना, ये तलवार से ज़्यादा घाव रखता है। वो कहते हैं ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। हीरा सबसे सख्त धातु होती है इन मालूम चीज़ों में जिनका तस्करा किया जाता है, लेकिन फूल की पत्ती से कट जाएगा। लेकिन मर्द नादा पे कलाम दिल फरे बेअसर। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कलाम की नरमी दें। नरम बारिश की तरह नरम बात दिल में जाती है, हल्की हल्की फुहार की तरह दिल पे पड़ती है और अंदर से अंदर चली जाती है। तो यहाँ आप देखिए कि दुश्मनी इस मोहब्बत में बदल गई और अल्लाह के नबी ने फिर इजाज़त दे दी। आप बताएं, हम होते अल्लाह के नबी की जगह तो क्या करते? इस पर डिस्कशन कीजिएगा बाद में। हम कहते पकड़ लो इनको, जाने भी ना दो, लेकिन आपने कहा नहीं दे दो। ये अखलाक लाएं। देखिए, काम नबियों वाला करना है ना, तो अखलाक भी नबियों वाला लाना पड़ेगा। हम तो अपने रिश्तेदारों को नहीं माफ़ करते, हम तो अपने प्यारों के साथ ही बिगाड़ के रखते हैं, दुश्मनों की बात तो क्या करें। बहरहाल, इसके बाद एक और छोटा गज़वा, गज़वे बनुल अहयान, रबीउल अव्वल 6 हिजरी में हुआ। बनुल अहयान एक कबीला था, ये वो लोग थे जिन्होंने रजी के सहाबा को कत्ल किया था। अब आप देख रहे हैं कि जो बुरा करते हैं तो फिर अल्लाह सुभान तआला कैसे वक्त के साथ साथ उनके साथ भी उसी तरह के हालात पैदा करते हैं। ये हजाज के बहुत अंदर असफान की हदूद में आबाद थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने इनसे निमटने में थोड़ी देर की, यानी थोड़े दूर थे तो आपने सोचा कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी एक हिकमत की बात समझिए आप अपने लिए, मैनेजमेंट के नाते से भी, दीन के कामों के करने के नाते से भी, और वो ये है कि पहले अर्जेंट और करीब के टास्क निभा लें। इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट में जो काम आपके लिए लाजमी हैं करने के, उनको पहले कर लें, और जो बातें जो भी 2, 4, 6 दिन के बाद चाहिए उसमें पढ़ के अगर आज शाम के किसी ज़रूरी काम से आप हट गए तो ये चीज़ आपके लिए दुरुस्त नहीं होगी। खैर, आपने इनको थोड़ा सा मौका दिया। जब कुफार के मुख्तलिफ गिरोहों में फूट पड़ गई और आप दुश्मनों से मुतमईन हो गए, ये भी नोट करिएगा बात, आए थे ग़ज़वे अहज़ाब में मुसलमानों को तोड़ने, गठजोड़ किया, फिर मुसलमानों को तो नहीं तोड़ सके लेकिन अपने दिल भी इकट्ठे हो गए। आगे दोस्त थे अब एक दूसरे के, अब दुश्मन हो गए। तो जब दुश्मन हुए तो अब अल्लाह के नबी को इत्मीनान था कि दोबारा ये नहीं जुड़ेंगे इस्लाम के ख़िलाफ़। आपने मदीना का इंतज़ाम इब्ने उम्मे मकतूम को सौंपा। 200 सहाबा और 20 घोड़ों के साथ रबीउल अव्वल 6 हिजरी में बनुल अहयान का रुख किया और यलगार करते हुए बतने गरान तक जा पहुँचे। ये इमेज और इस्फान के दरमियान एक वादी है, यहीं आपके सहाबा को शहीद किया गया था। आपने इनके लिए दुआ रहमत की और 2 रोज़ यही क़याम फरमाया। इधर बनुल अहयान को खबर हो गई, वो पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग निकले। हाईलाइट करें, ये कैसा रूप है? आज के मुसलमानों का रूप क्यों नहीं? आप मुसलसल पढ़ रहे हैं पीछे, यहूद हैं, बनु खुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनका, खंदक की जंग है या उहद की जंग है, और अब यहाँ बनुल अहयान, सब अल्लाह के नबी को और सहाबा को आता दे के भाग जाते थे। क्या गुर था, कौन सा असलहा था सहाबा के पास? ईमान की ताकत थी। ये आज आ गई तो हमें भी किसी दुश्मन को ज़्यादा धमकाना नहीं पड़ेगा। खैर, इनका कोई आदमी हाथ ना सका। फिर आपने असफान का कसद किया, वहाँ से 10 सवारों का दस्ता आगे भेजा ताकि कुरैश इनकी आमद का हाल सुनकर मरूब हो जाए। इस दस्ते ने कुराउल गमीम तक का चक्कर लगाया। इसके बाद आप कुल 14 दिन मदीना से बाहर गुजार कर मदीना वापस आ गए। ये जो बात है ना कि आप वहाँ आगे असफान तक गए और 10 सहाबा को भेजा, ये क्यों था? यहाँ भी एक बात समझिए कि इस्लाम में असलहे के इस्तेमाल से ज़्यादा उसके इजहार को पसंद किया गया है। दुश्मन पे रोब डालो ताकि वो इस्लाम की तरफ नज़र ना उठा सके मैली। तो बहरहाल, आप देखिए कि ये एक मुसलमानों को और ख़बर मिली, और आपने ये भी इसमें बात नोट की होगी कि ग़ज़वे खंदक में जो कि आपने कहा था अब हम आएंगे, तो अब आप देखेंगे कि अगली जंगों में पहल इधर से हो रही है। इसके बाद एक सरिया हुआ था, ईस ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर थे अबुल आस। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या बहुत दिलचस्प है। अगर आपको याद हो तो ज़ैनब के ये शौहर अबुल आस ग़ज़वे बदर में कैदी बनकर आए थे। इन्होंने अपने फ़िदिये के लिए हार दिया था, जिसको देखकर अल्लाह के नबी रकीक हो गए। फिर उसके बाद जब आपको छोड़ा गया तो इस शर्त पर कि मेरी बेटी का रास्ता नहीं रोकना, ये वही वाले अबुलास। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जमादिल उला 6 हिजरी में रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को 170 सवारों के साथ ईस की जानिब रवाना किया। मकसद शाम से आने वाले कुरैशी काफ़िले को पकड़ना था, जिसके सरबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब के शौहर अबुल आस बिन रबी थे। मुसलमानों ने इस काफ़िले को लोगों समेत गिरफ़्तार कर लिया। अलबत्ता अबुल आस हाथ ना आए, लेकिन वो सीधे मदीना पहुँचे, हज़रत ज़ैनब की पनाह ली और इनसे कहा कि वो रसूलुल्लाह से कहें कि आप काफ़िले का माल वापस कर दें। इन्होंने अपनी बीवी की पनाह ले ली। हज़रत ज़ैनब ने सिफारिश की और आपने छोटी बड़ी थोड़ी ज़्यादा हर चीज़ वापस कर दी। अबुलास तिजारत, माल और अमानत के मामले में मक्का के चंद गिने चुने लोगों में से थे, यानी बहुत मारूफ थे कि खयानत नहीं करते। मक्का गए, अमानत अहले अमानत को अदा की, फिर मुसलमान हो गए और हिजरत करके मदीना आ गए। रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैनब को पहले ही निकाह के तहत इनको वापस कर दिया। ये वापसी 3 साल से कुछ ज़्यादा अरसे की जुदाई के बाद हुई। यहाँ आप देखिए कि एक दो खूबसूरत बातें हैं। पहली बात है कि सब्र। अल्लाह के नबी ने फौरन घर नहीं तोड़ा, हालांकि उस वक़्त इस्लाम रेवोल्यूशनरी दौर में था, इनकलाबी दौर था। वो फ़र्क होता है, आज के अहकाम शौहर और बीवी के कुफर और इस्लाम पे आने या रहने के फ़र्क हैं अल्लाह के नबी के दौर के अहकाम से। ये बात समझिएगा, तब तो इस्लाम आ रहा था, अभी कई चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ये ऐसी कि जैसे घर बन रहा हो उस वक़्त के हालात, और जब एक घर पूरा बन चुके तो उस वक़्त के हालात में फ़र्क होता है। तो आज के अहकाम को तो हम इस वक्त शेयर नहीं करते, लेकिन उस दौर के नाते देखिए कि 3 साल आपने अपनी बेटी को बिठाए रखा। तो अरबों में तो इसका रिवाज नहीं था, कोई फौत भी हो जाता तो उसके कुछ महीने के अंदर दूसरी जगह निकाह हो जाता था, लेकिन असल में इन सब का इस्लाम अल्लाह को मंजूर था, इसलिए इतना इंतज़ार हुआ। और दूसरी बात यह है कि उसी निकाह पे उनको वापस भेज दिया। इससे क्या पता चलता है कि जो उस मुआशरे के लीगल टर्म्स होते हैं ना, उसका भी ख्याल किया जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे आप नॉर्वे में रहते हैं ना, तो अगर एक नॉन मुस्लिम कपल है, नॉर्वेजियन लॉ के मुताबिक उनका निकाह हो चुका है, शादी वेडिंग जिसको कहते हो गई, अब जब वो दोनों ही मुसलमान होते हैं तो उनको दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप समझें कि इस्लाम रह जाते का बैर नहीं रखता कि हर चीज़ अब उससे अपोजिट करनी है जो पहले हो रही थी, सिर्फ वो चीज़ें बदली जाती थी जिसका इस्लाम के किसी बुनियादी काम के साथ टकराव होता था। तो बहरहाल ये जंग भी इनके लिए बाबरकत साबित हुई। फिर दूसरा बात देखिए कि आपका अमानतों को वापस करके आना, ये भी एक बहुत ही काबिल गौर नुकता है कि जिसका दिल अच्छा होता है ना, जो लोगों के मामले में बामानत है, अल्लाह ताला उसको फिर ईमान और हिदायत की तौफीक दे देता है। इस दौरान अल्लाह के नबी ने कुछ और सराया भी भेजे, जिनका दुश्मन की सरकशी तोड़ने, इनके शर की आग बुझाने और दूर दराज इलाकों तक अमन अमान फैलाने में बड़ा असर था। फिर आपके पास कुछ इस तरह की खबरें आईं कि आप गजवा बनू मुस्तलक के लिए तशरीफ़ ले गए, यानी अब हालात क्या हो रहे हैं, गजवा बनू मुस्तलक तक पहुँच रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने पहले थोड़ा बहुत कुरान पाक को पढ़ा है, चले दौरे कुरान में, वो इस नाम से तो नहीं जानेंगे, लेकिन हज़रत आयशा पर एक तोहमत लगी थी उसको जानते हैं। बस गजवा बनू मुस्तलक के साथ ये लिख लीजिए, ये है वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी के ऊपर एक तोहमत लगी थी और जो बाद में एक बहुत बड़े फितने का ज़रिया बनी। हम खुद सोचें, इस वक्त जितना ज़्यादा सीरत को पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल अल्लाह के नबी के मिशन की समझ आने लगेगी, और इसके बग़ैर कुरान को पढ़ना और उसको समझना मुमकिन ही नहीं है।